नमस्कार भारत, तारीख 26 जुलाई दिन बुधवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने रूस, ईरान व उत्तर कोरिया पर नए प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक पर भारी बहुमत से मतदान किया।
I think the White House understands that Russia did try to mess with our elections again, not affecting the vote. That's clear as well too.
भारत और चीन के बीच भूटान सीमा पर तनाव जारी। चीन चाहता है कि भारत पीछे हटे, लेकिन वो खुद पीछे क्यों नहीं हटता?
चीन बौखलाया हुआ है, उनकी तरफ से इतना ज्यादा रेटोरिक बनाया गया है कि उनको पीछे हटने में मुश्किल हो रही है, और जब वो पीछे हटेंगे तो उनकी छवि में कुछ डेंट पड़ सकता है।
बताएंगे कि भारत और भूटान की संधि में क्या है। कर्नाटक में लिंगायत को हिंदू धर्म से अलग मान्यता देने की मांग पर विवाद, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। रूस, ईरान और उत्तर कोरिया पर नए प्रतिबंध लगाने के लिए अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में विधेयक को पारित कर दिया गया है। इस विधेयक को सीनेट में मंजूरी मिलने पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास भेजा जाएगा। रूसी संसद की अंतर्राष्ट्रीय मामलों की कमेटी के प्रमुख ने कहा कि इससे अमरीका और रूस के संबंध और उलझ जाएंगे। अमरीका में पिछले साल हुए राष्ट्रपति चुनाव में कथित रूसी हस्तक्षेप की जाँच इन दिनों चल रही है, और इसी सिलसिले में राष्ट्रपति ट्रंप ने जस्टिस के प्रमुख जेफ सेशंस से नाराजगी जताई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के स्वास्थ्य कानून ओबामा केयर को खारिज करने की अपनी चुनावी वायदे की तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक कदम आगे बढ़ गए हैं। अमेरिकी सीनेट ने अफोर्डेबल हेल्थ केयर को खत्म करने के लिए बहस जारी रखने के लिए वोटिंग की है। पक्ष और विपक्ष में जब 50-50 वोट पड़े तो उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने निर्णायक वोट डाला। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीनेट में वोटिंग का स्वागत किया है, लेकिन अभी उनकी राह में कई अड़चने हैं। इससे पहले ओबामा केयर को खत्म करने के कई प्रयास नाकाम हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा।
On healthcare, I'm extremely happy that we got this vote. This is
मैं वोटिंग से बहुत खुश हूं। अगर इतिहास में देखें तो ये काफ़ी मुश्किल था। हम अब कुछ बेहतर कानून लाने पर विचार करेंगे। हमारे पास कई विकल्प हैं, और जब आपके पास 52 सीनेटर हों और आपके खिलाफ वोट करने वाले 48 सीनेटर हों तो ये आसान नहीं होता। हमें 51 वोट मिले हैं, 50 वोट हमारे खिलाफ थे, यानी कि 2 रिपब्लिकन सीनेटरों ने इसके खिलाफ मतदान किया है। ये दुखद है। 1 या 2 हफ्तों में हम अमरीकी लोगों के लिए एक अच्छी स्वास्थ्य योजना लाएंगे। ये थे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। फलस्तीनी प्रशासन के प्रमुख महमूद अब्बास ने कहा है कि अल अक्सा मस्जिद से मेटल डिटेक्टर हटाए जाने के बावजूद इसराइल के साथ सुरक्षा सहयोग नहीं किया जाएगा। पूर्वी यरूशलम में पवित्र स्थल पर सुरक्षा के कदमों को लेकर फलस्तीन ने बहिष्कार किया है। फलस्तीन का कहना है कि अल अक्सा मस्जिद पर पहले जैसी सुरक्षा बहाल की जाए। इसराइल ने यहां पर सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं। इससे पहले इस पवित्र स्थल के पास 2 इसराइली पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद यहां पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए थे, और इससे फलस्तीन नाराज था। लीबिया में 2 विरोधी गुटों के नेताओं ने देश की स्थिरता के लिए संघर्ष विराम पर सहमति जताई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और संयुक्त राष्ट्र के समर्थन वाली लीबियाई सरकार की मध्यस्थता से ये बातचीत संभव हो पाई। पूर्वी लीबिया में लीबियन नेशनल आर्मी के प्रमुख खलीफा हफ्तार ने शर्तों के साथ युद्ध विराम मानने पर सहमति जताई। ये पहली बार है कि इस तरह का युद्ध विराम लीबिया में लागू होने जा रहा है। लीबिया से होते हुए भूमध्य सागर आने वाले प्रवासियों से जूझ रहे यूरोप के लिए लीबिया में शांति स्थापित करना एक प्राथमिकता बनी हुई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इस मौके पर ये कहा।
Aujourd'hui, le président Sarraj et le général Haftar peuvent devenir les
आज प्रधानमंत्री फैयाज अल सर्राज और जनरल हफ्तार राष्ट्रीय एकता समझौते की प्रतिबद्धता और शांति के प्रतीक बनकर सामने आए हैं। आपने यहाँ आकर जो हिम्मत दिखाई है वो ऐतिहासिक है। अन्य लोगों की कार्रवाइयों के बावजूद आप खतरा उठाकर समझौते और शांति के लिए आगे आए हैं। ये थे इमैनुअल मैक्रों के शब्द। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लेकर तकनीक के क्षेत्र में बहस छिड़ी हुई है। सोशल मीडिया वेबसाइट फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग और व्यापारी एलन मस्क के बीच इस मुद्दे पर कड़वी बहस जारी है। दोनों ने एक दूसरे पर आपसी अलग अलग मत जताए हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए रूस को लेकर पशोपेश यानी कि उलझन की स्थिति पैदा होने के आसार बन रहे हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधि सभा ने रूस, ईरान और उत्तर कोरिया पर नए प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को भारी बहुमत से पारित कर दिया है। सेनेट में पारित होने के बाद यह विधेयक राष्ट्रपति ट्रंप के पास जाएगा, लेकिन इसे रोकने से रूस के साथ संबंध सुधारने की योजना को झटका लगेगा और अगर वो वीटो करते हैं तो रूस के लिए उनके रवैये पर सवाल उठ सकते हैं। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए हरिता कांडपाल से।
अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के 419 सदस्यों ने रूस, ईरान और उत्तर कोरिया पर नए प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक के समर्थन में मतदान किया, वहीं सिर्फ 3 सदस्यों ने इसके खिलाफ मतदान किया था। इससे पिछले साल के राष्ट्रपति चुनाव में कथित रूसी हस्तक्षेप और पूर्वी यूक्रेन में रूस के दखल के लिए रूसी अधिकारियों को निशाना बनाया जा सकेगा। अमरीकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन के अलावा ट्रंप प्रशासन के 2 अन्य सदस्यों ने इस नए विधेयक के खिलाफ वोट डाले थे, क्योंकि इस विधेयक से रूस पर पहले से लगे प्रतिबंधों में नरमी बरतने की राष्ट्रपति ट्रंप की शक्तियों को भी कम करने का प्रावधान है। हाउस में बोलते हुए डेमोक्रेट सांसद डेविड सिसिलिन ने कहा कि रूस की जिम्मेदारी तय करने के लिए ये प्रतिबंध जरूरी हैं। डेविड सिसिलिन ने कहा, जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति रूस के हमले के लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहते, इसलिए कांग्रेस को अपनी भूमिका तय करनी होगी। इस विधेयक को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास भेजे जाने से पहले सीनेट से मंजूरी मिलना जरूरी है। अगर ये विधेयक सीनेट में भी पास हो जाता है तो इससे राष्ट्रपति ट्रंप का सिरदर्द बढ़ने की संभावना है, क्योंकि रूस के साथ संबंध बेहतर करने की उनकी योजना को इससे झटका लग सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के पास इस विधेयक को वीटो करने का भी विकल्प है, लेकिन संवाददाताओं के मुताबिक अगर वो इसे वीटो करते हैं तो वो रूस की तरफ अपने झुकाव का संकेत दे सकते हैं। एक रिपब्लिकन नेता स्कॉट टेलर ने कहा कि राष्ट्रपति इस विधेयक को वीटो करके रोक दें, इसकी संभावना कम है।
I think the White House understands that Russia did try to mess with our elections again, not affecting the vote. That's clear as well too.
मुझे लगता है कि व्हाइट हाउस समझता है कि रूस ने हमारे चुनाव में दखल देने की कोशिश की थी और इससे वो इस विधेयक को वीटो नहीं करेंगे। ये जरूरी है कि हम एक कड़ा संदेश दें। मैं मानता हूँ कि अगर उन्होंने नहीं किया तो उनके फैसले को भी लांघ दिया जाएगा। ये थे स्कॉट टेलर के शब्द। वहीं रूसी संसद ड्यूमा की अंतर्राष्ट्रीय मामलों की कमेटी के प्रमुख लियोनिड स्लत्स्की ने कहा कि इन नए प्रतिबंधों से अमेरिका और रूस के संबंध और जटिल हो जाएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप का 6 महीनों का कार्यकाल चुनाव में रूसी दखल की जांच से घिरा रहा है। सीनेट की इंटेलिजेंस कमेटी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और विशेष अधिवक्ता इसकी जाँच कर रहे हैं। कल ही ट्रंप के दामाद सीनेट कमेटी के सामने पेश हुए थे।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 6155, 7995, 9915 और 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत। भारत और चीन के बीच भूटान सीमा पर लगातार तनाव बना हुआ है। चीन का रुख आक्रामक है। इस बीच भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 27 व 28 जुलाई को चीन में होंगे। वो ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। इस बैठक से पहले भारत को लेकर चीनी मीडिया का रुख भी आक्रामक बना हुआ है। चीन भारत को लगातार पीछे हटने के लिए कह रहा है। इस मुद्दे को लेकर बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और भारत चीन मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर स्वर्ण सिंह से बात की और पूछा कि क्या भारत के सामने ऐसी स्थिति आ सकती है कि उसे पीछे हटना पड़े।
भारत के लिए मुझे लगता नहीं कि कोई इस तरह की हालात हो सकते हैं, क्योंकि भारत की जो शुरू से नीति रही इस बात को लेकर वो ये है कि इसको बातचीत से सुलझाया जाए, तो उससे पीछे हटने की कोई नौबत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसको अल्टीमेटली बातचीत से ही सुलझाया जाएगा। जहां तक जमीन पर हालात की बात है, वहां ये है कि भारत के सैनिकों ने चीन के सैनिकों को पीछे हटा दिया था, तो उससे थोड़ा चीन बौखलाया हुआ है। तो उनकी तरफ से इतना ज्यादा रेटोरिक बनाया गया है पिछले 6 हफ्तों में कि उनको पीछे हटने में मुश्किल हो रही है, और जब वो पीछे हटेंगे तो उनकी शायद छवि में कुछ डेंट पड़ सकता है, कुछ उस पर असर हो सकता है।
अच्छा, ये सूरत हाल है कि चीन को ये सोचना पड़ रहा है कि उसकी एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होगी।
मुझे लगता है कि चीन में अंदरूनी हालात इस वक्त ऐसे हैं, वो चाहे पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जो 90वीं वर्षगांठ है 1 अगस्त को वो हो, या फिर नवंबर में होने वाली कम्युनिस्ट पार्टी की 19वां सम्मेलन जो है पंचवर्षीय वो हो, और वहाँ की अंदरूनी पार्टी लीडरशिप जो बदलने का समय आया है, तो इन सब को लेकर वहाँ के जो नेता हैं, जो वहाँ के मिलिट्री लीडर्स हैं, वो अपनी जो स्ट्रांग होने की एक उन्होंने इमेज बनाई हुई है उसमें कंप्रोमाइज नहीं दिखा सकते, क्योंकि मान लीजिए कि शी जिनपिंग यदि बातचीत खोलते हैं तो उससे क्या होगा कि उनकी जो अंदरूनी छवि है उस पर असर पड़ेगा, और पार्टी में जो दूसरे खेमे हैं उनका प्रभाव बढ़ जाएगा चीन की भविष्य नीतियों को बनाने में, और खासकर जो लीडरशिप में ट्रांसफर होने वाला है अभी शी जिनपिंग के बाद कौन से वहां लीडर आएंगे इनकी लिस्ट बन के आने वाली है इस नवंबर की पार्टी की कांग्रेस में, तो उसमें कौन कौन नाम जुड़ेंगे उसमें सब खेमे कोशिश कर रहे हैं। शी जिनपिंग की यदि छवि शक्तिशाली नहीं रहेगी तो दूसरे खेमों का प्रभाव बढ़ जाएगा, इसलिए अंदरूनी राजनीति के मद्देनजर आप देखें कि ये पॉसिबल नहीं है उनके लिए कि पीछे हटें या ऐसा दिखें कि वो कुछ कंसेशन दे रहे हैं भारत को, मुझे लगता है इसलिए उसके बाद कुछ होने की उम्मीद की जा सकती है।
तो क्या भारत के साथ भी ऐसी कोई बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस तरह की अपनी इमेज दिखानी पड़ रही है कि वो पीछे हटने की कम से कम
जाहिर है कि भारत के प्रधानमंत्री की छवि भी एक स्ट्रांग लीडर की है और वो नेशनलिस्टिक लीडर हैं, पर उनकी अंदरूनी परेशानियां अभी कम है क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्शन जो है वो भी 2 साल दूर हैं, जबकि शी जिनपिंग की 5 वर्षीय टर्म जो है जनरल सेक्रेटरी पार्टी के हैं वो उनकी नवंबर में खत्म होने वाली है, उनको दूसरी एक और टर्म मिलने वाली है तब, तो उस वक्त वो पूरी अपनी वर्क रिपोर्ट देंगे कि हमने क्या किया 5 साल में, और उसके साथ साथ शी जिनपिंग के बाद 2023 में कौन नए लीडर बनेंगे उनकी भी लिस्ट नजर आएगी इस बार।
अच्छा,
तो उसमें क्या नाम जुड़े जाएंगे उस पर बड़ी बहस छिड़ी हुई है चीन में, उनके लिए समय अभी है, इसी वक्त है कि वो अपनी छवि को शक्तिशाली बनाए रखें।
भारत और चीन में तनातनी का विश्लेषण कर रहे थे चीन मामलों के जानकार डॉक्टर स्वर्ण सिंह। करीब एक दशक पहले भारत व भूटान के बीच रक्षा सुरक्षा व विदेश नीति को लेकर संधि हुई थी। भूटान की सीमा पर भारत के रुख को इसी संधि से जोड़कर देखा जाता है। इसे लेकर हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने भूटान में भारत के राजदूत रहे पवन वर्मा से संपर्क साधा और पूछा इस संधि के बारे में।
ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप 2007 की वो तो सार्वजनिक है, जिसमें भूटान और भारत के बीच में रक्षा के सुरक्षा के मामलों में, विदेश नीति के मामलों में एक दूसरे के हित में राय मशवरा और समर्थन पर करारनामा हुआ है, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। आपको मालूम है कि अब भूटान और भारत के बीच में बहुत पुराने और घनिष्ठ संबंध है। ये जो मामला है जहाँ सीमा अनिश्चित है, दो देशों के साथ चीन की अभी सीमा पूरी तरह से निर्धारित नहीं हुई, एक भूटान है एक भारत है, और भूटान में जो ये प्लेटो है डोकलम प्लेटो उसका एक स्ट्रेटेजिक महत्व है, इसलिए चीन उसको शायद एक तरफा तरह से कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, भूटान उसको अपनी टेरिटरी मानता है, और भारत का भी इसमें एक किरदार इसलिए है कि तीनों देशों के बीच में भी ये समझौता है कि जहां ट्राई जंक्शन होगा यानी तीनों देशों की सीमा जिस बिंदु पर तय होगी जिस जगह पर उसमें तीनों देशों के बीच में राय बातचीत होकर के ही होगा, तो इस एक तरफा अग्रेशन कहिए या चाइना की कोशिश का विरोध करना जरूरी है, क्योंकि मुझे कहने की जरूरत नहीं कि जो डोकलम प्लेटो है उसके नीचे चुंबी वैली और चुंबी वैली इसको हम चिकन्स नेक कहते हैं, वो छोटा सा एक कॉरिडोर है, इसमें भारत और अपना नॉर्थ ईस्ट है उसके बीच में कनेक्टिविटी है।
जो चाइना का एग्रेसिव स्टैंड है और उसके जवाब में जो भारत का अभी तक जवाब रहा है, तो जो भारत और भूटान के बीच में संधि है क्या उसके हिसाब से भारत का जवाब बिल्कुल सही कहा जाएगा?
मैं समझता हूँ बिल्कुल सही, और इसमें तो भारत के अपने भी निजी स्ट्रेटेजिक और बड़े महत्वपूर्ण इंटरेस्ट है।
भूटान का जो रिएक्शन है अभी तक का उसे आप किस तरह से देखते हैं?
भूटान ने सही तरीके से कहा है चाइना से कि हमारे बीच में बातचीत चल रही है, कई राउंड हो चुके हैं जहां पर हम दोनों सीमा के प्रसंग में अपनी अपनी बात रखते हैं। और ये भी हम लोग के बीच में तय हो चुका है कि जब तक ये सीमा निर्धारित न हो शांति बहाल रहनी चाहिए सीमा पर। अब इसके विरुद्ध आपने एक तरफा जो कोशिश करी है इस डोकलम प्लेटो को लेकर हड़पने की या अपना उस पर हक जताने की, वो गलत है। भूटान ने तो ये साफ कहा है और भारत इस बात का समर्थन करता है।
फिलहाल की क्या स्थिति है सर वहाँ पर उस जगह को लेकर जिसे लेकर पूरा विवाद चल रहा है?
अब चाइना का तो रुख ये होता है कि आप वहाँ आ गए हैं डोकलम प्लेटो पर जहाँ आपको नहीं होना चाहिए, पर दुनिया जानती है और उसको एक वस्तुस्थिति ये है कि चीन घुसाया उस जगह भूटान की सीमा में। भूटान छोटा मुल्क है पर हर देश सॉवरन होता है और दोनों देशों के बीच यानी भूटान और चीन के बीच में भी और चीन और भारत के बीच में भी ये समझौते अलग से है कि सीमा पर जब तक बातचीत चल रही है तब तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे या लाइन ऑफ कंट्रोल पे या डिस्प्यूटेड बाउंड्री पे जो विवादित सीमा है उसको शांति बहाल रहे। हम भूटान के समर्थन में खड़े।
तो भारत और भूटान के बीच किस तरह की संधि है बता रहे थे भूटान में भारत के राजदूत रहे पवन वर्मा। कर्नाटक में लिंगायत समुदाय की मांग को लेकर विवाद शुरू हो गया है। क्या लिंगायत समुदाय को अलग धर्म के तौर पर मान्यता दी जा सकती है? अब तक लिंगायत को हिंदू धर्म का हिस्सा माना जाता रहा है लेकिन समुदाय के एक हिस्से से मांग उठने के बाद कांग्रेस की सत्ताधारी सरकार ने इसे समर्थन दे दिया। राज्य में विधानसभा चुनाव के सिर्फ 10 महीने बाकी हैं। ऐसे में ये मांग क्यों उठी और इसके राजनीतिक पहलू क्या हैं? सुनिए बेंगलुरु से इमरान कुरैशी की इस रिपोर्ट में।
पिछले हफ्ते कर्नाटका के बीदर जिले में एक असामान्य रूप से बड़ी सभा हुई जहां एक मांग की गई कि लिंगायत समुदाय को एक मजहब का दर्जा दिया जाए। इसमें दिलचस्प बात यह थी कि ये सार्वजनिक बैठक बीदर में हो रही थी जिसके एक तरफ महाराष्ट्र राज्य है और दूसरी तरफ तेलंगाना राज्य। इसका महत्व यह है कि लिंगायत समुदाय के लोग महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में भी फैले हुए हैं, हालांकि कर्नाटका में उनकी जनसंख्या करीब 18% है। लिंगायत समुदाय कर्नाटका में सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से भी एक प्रमुख वर्ग है। इसके बावजूद लिंगायत समुदाय के अपने लिए अलग मजहब का दर्जा मांगने के बहुत सारे कारण हैं। वकील बी टी वेंकटेश कहते हैं, लिंगायत कभी भी हिंदू धर्म में नहीं था। मूर्ति पूजा हो या हिंदू भगवान की बात हो, वो लिंगायत नहीं करते हैं। हिंदू धर्म और लिंगायत धर्म में बहुत फर्क है। ये थे बी टी वेंकटेश के शब्द। दरअसल लिंगायत समुदाय का जन्म 12वीं सदी में हुआ जब बसवन्ना हिंदू समाज की जाति व्यवस्था के खिलाफ सामाजिक सुधार का रास्ता पकड़ लिया। बसवना खुद एक ब्राह्मण परिवार के थे लेकिन सालों बाद लिंगायत समुदाय में भी स्वामी जी एक नया ब्राह्मण बन गया। जो लोग उनकी जाति से बसवना के वचनों को अपनाया वो अपनी जाति का नाम लिंगायत समुदाय में ले आए। जैसे बनर्जी का बन गए बनर्जी का लिंगायत या गानीगर बन गए गानीगर लिंगायत। तो लिंगायत समुदाय में वही हुआ जो हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था में हो रहा था। लेकिन थोड़े सालों से लिंगायत समुदाय में डॉक्टर M.M. कलबुर्गी जैसे लोग बसवना के मूल पद पर जाने के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं। आपको याद दिला दें कि 2 साल पहले डॉक्टर कलबुर्गी की हत्या हो गई थी। बहरहाल विश्व लिंगायत महासभा के संजय मक्कल कहते हैं,
पहले अगर हम 10 साल के पीछे देखा गए तो कोई भी इसका यकीन नहीं करते थे। अगर हम कोई बात करेंगे तो लोग हमको बोलते थे क्या इसको पागल कुत्ता काटा है क्या। इसे लोग मुझे मेरे साथ बहुत कुछ ऐसा विडंबना भी की, मेरे साथ रिएक्ट भी किए थे। लेकिन अब माहौल ऐसा हुआ कि सिर्फ सुनने भी नहीं लेकिन वो लोग खुद मूवमेंट करना चाह रहे हैं। जैसे कि बीदर में हम 10,000-5,000 लोग इकट्ठा होंगे बोलकर हमारा एक अंदाज था लेकिन 2 लाख के ऊपर लोग आए थे और मतलब हर तरफ से लोग को अब जानकारी हुआ कि लोग को पता चला है कि हम हिंदू धर्म वाले नहीं हैं लेकिन हम भी जैसे सिख लोग एक स्वतंत्र धर्म है, बौद्ध एक स्वतंत्र धर्म है, जैन एक स्वतंत्र धर्म है, ऐसे ही एक स्वतंत्र धर्म है।
राजनीतिक तौर से देखें तो लिंगायत समुदाय 2008 से बीजेपी का समर्थन करते आ रहे हैं क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा लिंगायत समाज के हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब बीदर की सार्वजनिक बैठक हुई तो उसके फौरन बाद कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने उनकी मांग को समर्थन दे दिया। इसका मतलब ये कि कांग्रेस येडियुरप्पा के समर्थकों का विभाजन करना चाहती है। जाहिर है कि चुनाव के वर्ष में इस तरह की बहुत सारी राजनीतिक चाल खेली जाएगी। इमरान कुरैशी, BBC बेंगलुरु।
लिंगायत समुदाय की मांग को लेकर विवाद। छत्तीसगढ़ सरकार पिछले कुछ महीनों से विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ जमीन कब्जा किए जाने के कई मामलों में जांच करवा रही है, लेकिन इस बार जमीन घोटाले में उनकी ही सरकार की कृषि और जल संसाधन मंत्री फंसते नजर आ रहे हैं। जल संसाधन मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल पर आरोप है कि उनकी पत्नी और बेटे के नाम से वन विभाग की जमीन को कथित तौर पर फर्जी तरीके से खरीदा गया और अब उस पर रिजॉर्ट बनवाया जा रहा है। सुनिए रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
पिछले 27 सालों से रायपुर के विधायक और छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार में कृषि मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल पर आरोप है कि उनकी पत्नी और बेटे की एक कंपनी के नाम पर महासमुंद जिले में 4 एकड़ से अधिक सरकारी जमीन खरीद ली गई और इस पर करोड़ों रुपए की लागत से रिसॉर्ट का निर्माण भी शुरू कर दिया गया। मामले की शिकायत हुई तो आरोपी मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल के विभाग ने ही लिखकर दे दिया कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन अब विपक्षी दलों ने इसे ही मुद्दा बना लिया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और विधायक भूपेश बघेल ने ब्रजमोहन अग्रवाल के बहाने मुख्यमंत्री रमन सिंह पर ही निशाना साधा।
रमन सिंह के जीरो टॉलरेंस पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, उसके कथने और करने में जो अंतर है वो सब छत्तीसगढ़ के लोगों ने महसूस किया है। यदि रमन सिंह भ्रष्टाचार खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो तत्काल उसे तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें।
हालांकि ब्रजमोहन अग्रवाल का कहना है कि इस पूरे मामले में उनकी या उनके परिवार की कोई गलती नहीं है।
हमने जो कुछ किया है वो पूरे नियमों के तहत किया है। जिस जमीन के बारे में कि मेरी श्रीमती जी या मेरे सुपुत्र के नाम से जिस जमीन का उल्लेख किया जा रहा है, हमने जिस किसान से खरीदा है उस समय उस किसान के नाम पर वो जमीन थी और उस किसान से हमने खरीदा है, तो हमारी तरफ से मुझे लगता है कि हमारे किसी भी पक्ष की कोई गलती नहीं है।
आरोपों के बाद राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने पूरे मामले की फाइल मंगाई है।
मैंने चीफ सेक्रेटरी से कहा है, मेरी जानकारी में अभी आया है। मैंने चीफ सेक्रेटरी से और इरिगेशन विभाग से जानकारी ली कि तथ्यात्मक जानकारी तो मुझे मालूम हो कि कौन से लेटर पीएमओ से गया, क्या विषय में जांच हुई, तो मैंने सीएस को ही कहा है कि इस विषय में मुझे जानकारी है।
पिछले महीने भर में विपक्षी दल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक भूपेश बघेल के खिलाफ सरकार ने एक के बाद एक अलग अलग 3 कथित जमीन घोटालों की जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन अपने ही मंत्री के खिलाफ सरकार का रुख फिलहाल तो नरम दिख रहा है। आलोक पुतुल, बीबीसी छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ में जमीन विवाद पर ये रिपोर्ट आप सुन रहे थे।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
और यहीं पर हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आजकल फिलहाल दुनिया जहां कार्यक्रम आप नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि विवेचना कार्यक्रम का पॉडकास्ट हमारे bbchindi.com पर है और जिसमें कि जो भी अंक आजकल प्रसारित हो रहे हैं उनको आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। पॉडकास्ट bbchindi.com पर उपलब्ध है। अब कार्यक्रम में अखबार के पन्ने पलटने का वक्त है। हरिता, क्या कह रहे हैं आज के अखबार?
आज के अखबारों में चीन का कड़ा रुख छाया हुआ है सभी अखबारों के पहले पन्ने पर। जनसत्ता ने लिखा है कि चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने दावा किया कि भारत ने चीनी क्षेत्र में घुसने की बात को स्वीकार किया है और इस गतिरोध को खत्म करने के लिए भारत को सिक्किम क्षेत्र के डोकलाम से अपने जवानों को ईमानदारी से वापस बुला लेना चाहिए।
और इसी पर हम अपने कार्यक्रम में शुरुआत में ही रिपोर्ट और सोनू सिंह से बातचीत भी सुन रहे थे। बिल्कुल।
द मिंट अखबार ने लिखा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी है और इस वित्त वर्ष में और इस तरह के नोट छापने की संभावना बहुत कम है। और ये लिखा गया है कि 200 के नए नोट जो है वो उसकी छपाई का काम शुरू किया गया है। अखबार ने ये अज्ञात सूत्रों के हवाले से लिखा है। द स्टेट्समैन की एक खबर है कि मद्रास हाईकोर्ट कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि छात्रों और कर्मचारियों को देशभक्ति की भावना उनमें जगाने के लिए स्कूलों, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी कार्यालयों में वंदे मातरम, जो कि राष्ट्रीय गीत है, वो गाया जाना चाहिए। जस्टिस एमबी मुरलीधरन ने कहा कि स्कूलों में हफ्ते में एक बार सोमवार या शुक्रवार को और कार्यालयों में एक महीने में एक बार इस गीत को गाया जाना चाहिए।
और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर लोगों को बंगाली या संस्कृत में इस गीत को गाने में दिक्कत हो तो तमिल में इसका अनुवाद करने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं।
जी बिल्कुल, दरअसल ये विवाद शुरू हुआ था एक परीक्षा को लेकर, जहाँ पर एक परीक्षार्थी ने जो है इसे बंगाली बताया था, जबकि कहा यह गया परीक्षा बोर्ड की तरफ से कि संस्कृत मूल का ये गाना है। इसके अलावा एक और खबर है जो कई अखबारों में मैं देख रही हूँ, इंडियन एक्सप्रेस ने इस पर लिखा है कि सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी को तीसरी बार जो है राज्यसभा की सदस्यता के लिए नहीं उनका नाम नामांकित किया जाएगा, ये केरल के मुख्यमंत्री ने कहा है। इसी पर कार्टून उन्होंने छापा है कि देखिए कौन है जो भारत को खुद से मुक्त करने के लिए आगे बढ़ रहा है, और इशारा सीपीएम की तरफ है। जनसत्ता का एक कार्टून की बात चलिए तो उस जनसत्ता का कार्टून कहता है कि नीतीश कुमार कहते हैं कि मुझे कोई भी दो नंबर की चीज़ नहीं चाहिए, यानी कि बिहार सरकार में नंबर दो तेजस्वी यादव जो है उनकी तरफ इशारा है, जिनके इस्तीफे को लेकर आजकल काफी हंगामा बिहार में मचा हुआ है, और महागठबंधन में भी
कहा जा रहा है कि शुक्रवार तक शायद कुछ
जी बिहार विधानसभा का सत्र शुक्रवार से शुरू हो रहा है। दैनिक भास्कर की खबर है कि 381 नकारा बाबुओं को मिली सजा, इनमें 24 IAS भी शामिल है। कार्मिक मंत्रालय ने पीएम को कार्रवाई की जानकारी दी है, दरअसल परफॉर्मेंस को लेकर जो है आंका गया और उसमें ये सारे अफसर नप गए हैं,
परफॉर्मेंस रिव्यू किया गया है।
जी
जी
जी, अमर उजाला की खबर है कि हवाला में अलगाववादी शब्बीर शाह गिरफ्तार किए गए हैं, सनत नगर आवास से पकड़कर उन्हें पुलिस ले गई, टेरर फंडिंग में NIA भी कर सकती है पूछताछ। हालांकि अभी दो दिन पहले ही 7 अलगाववादी नेताओं को कश्मीर से NIA ने गिरफ्तार किया और 10 दिन के लिए उन्हें हिरासत में भेजा गया है।
चरमपंथी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जो
विदेश से फंड लेने की उन पर,
बहुत बहुत शुक्रिया हरिता। और अब हम कार्यक्रम में बात करेंगे खेल समाचारों की।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं इंदु पांडे। टीम इंडिया श्रीलंका के दौरे पे गई हुई है, जहां पे 3 टेस्ट 5 वनडे और 1 T20 मैच खेला जाएगा, और आज टेस्ट सीरीज का पहला मैच गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा। इस समय मौजूदा परफॉर्मेंस की बात करें तो टीम इंडिया काफी स्ट्रांग है, और इसके साथ ही आंकड़ों के लिहाज से देखें तो भारत का पलड़ा भारी नजर आता है। दोनों पड़ोसी देशों के बीच अब तक 38 टेस्ट मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें से भारत ने 16 और श्रीलंका ने 7 टेस्ट जीते हैं और 15 मैच ड्रॉ रहे हैं। श्रीलंका क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन हर्षन तिलकरत्ने को श्रीलंका का अस्थायी बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है। वो भारत के खिलाफ होने वाली 3 टेस्ट मैचों की सीरीज तक टीम के साथ रहेंगे। श्रीलंका की टीम 2014 से बिना स्थायी बल्लेबाजी कोच के खेल रही है। क्रिकेट एक्सपर्ट विजय धैया, जो कि आजकल श्रीलंका में ही हैं, जब हमने उनसे पूछा कि क्या हार्दिक पांड्या को देखा जा सकता है खेलते हुए,
बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो इससे पहले भी श्रीलंका के दौरे पर एक ऑलराउंडर के रूप में स्टुअर्ट बिनी खेल रहे थे, तो उस तरीके की सोच जरूर हो सकती है कप्तान की कि एक ऑलराउंडर के साथ वो जाए जो तीसरे सीमर के रूप में आपको खेलते हुए नजर आए।
तो हार्दिक पांड्या के पास एक बहुत अच्छा चांस है अपना डेब्यू करने का, और आज ही रविचंद्रन अश्विन श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में उतरते ही 50 टेस्ट मैच खेलने की उपलब्धि हासिल कर लेंगे। खेल समाचारों में इतना ही, नमस्कार।
इंदु पांडे से आपने खेल समाचार सुन लिए, और यहीं पर आपको ये बताना जरूरी है कि bbchindi.com पर नया क्या कुछ है आपके लिए। बीबीसी हिंदी आजकल एक विशेष श्रृंखला चला रहा है, और इसका श्रृंखला का नाम है #BadTouch, यानी कि मासूम के यौन शोषण की कहानी। इसमें आप उन लोगों के, उन बच्चे अबोध बच्चियों के अनुभव आप पढ़ सकते हैं जिनके साथ उनके बचपन में कुछ गलत हुआ हो। इसके अलावा यदि आप कुछ विशेष खबरें पढ़ना चाहें, जैसे कि उदाहरण के तौर पर आखिरकार चंगेज़ खान की कब्र क्यों नहीं मिलती, एक खबर जिसका और मैं जिक्र करूंगा, वो कौन सा देश है छोटा सा दुनिया का जिसने कि दुनिया को ही बदल दिया। इस विविधतापूर्ण खबरों को पढ़ने के लिए bbchindi.com पर आइए, जहां पर हर रोज़ हम नई कहानियां आपके लिए ला रहे हैं। कार्यक्रम में इससे पहले कि आपसे हम विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
बीबीसी समाचार। रूस, ईरान और उत्तर कोरिया पर नए प्रतिबंध लगाने के लिए अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में विधेयक को भारी बहुमत से पास कर दिया गया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के स्वास्थ्य कानून ओबामा केयर को खारिज करने के अपने चुनावी वायदे की तरफ बढ़े राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमरीकी सीनेट ने अफोर्डेबल हेल्थ केयर को खत्म करने के लिए बहस जारी रखने के लिए वोटिंग की। फलस्तीनी प्रशासन के प्रमुख महमूद अब्बास ने कहा है कि अल अक्सा मस्जिद से मेटल डिटेक्टर हटाने के बावजूद इसराइल के साथ सुरक्षा सहयोग का बहिष्कार जारी रहेगा। लीबिया में दो विरोधी गुटों के नेता युद्ध विराम के लिए सहमत हुए। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के आज के इस अंक में बस इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे तिलक राज भाटिया। शाम को 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक मोहनलाल शर्मा को विदा दें और इस दौरान bbchindi.com का पन्ना आपके साथ है। नमस्कार।